ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
बैत का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। मैं पहले खुतबा पढ़ूंगा और उसके बाद जो अल्फाज कहलवाऊंगा वो आपको कहने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، ایمان لائی ہم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر اور تقدیر پر، بھلا ہو یا برا سب اللہ کی طرف سے ہے۔ توبہ کی ہم نے کفر سے، شرک سے، بدعت سے، نماز چھوڑنے سے، چوری کرنے سے، زنا کرنے سے، پرایا مال لاحق کھانے سے، کسی پر بہتان باندھنے سے، کسی کی غیبت کرنے سے اور ہر گناہ سے، چھوٹا ہو یا بڑا، اور عہد کیا ہم نے انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں کریں گی، اور اگر ہو گیا تو فوراً توبہ کریں گی۔ یا اللہ تو ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ तू हमारी तौबा कबूल फरमा, हमें अपनी सच्ची बंदियों में शामिल फरमा, हमें अपनी सच्ची बंदियों में शामिल फरमा, हमें तौफीक अता फरमा अपनी रजामंदी की और अपने पाक रसूल की ताबेदारी की। बस ये हो गई बैत। अब जो बातें मैं कहूं उनको ध्यान से सुनो। बैत होने का मतलब और खुलासा दो चीजें हैं, अल्लाह तबारक ताला के अहकाम को बजा लाने में, यानी अल्लाह ताला ने जिन कामों को करने का हुक्म दिया है उनको करने में, और जिन कामों से अल्लाह ताला ने बचने का हुक्म दिया है उनसे बचने में। आज तक हमसे जो गफलत और कोताही हुई उससे तौबा, और आइंदा ऐसी गफलत और कोताही नहीं करेंगे उसका अहदो पैमान और वादा। गोया ये बैत आपकी पिछली गुजरी हुई जिंदगी के हक में तौबा है और आने वाली जिंदगी के हक में एक तरह का मुआहदा, वादा और एग्रीमेंट है। तौबा में तीन चीजें होती हैं। नंबर एक, आदमी गुनाह को छोड़ दे। गुनाह पर कायम रहते हुए तौबा नहीं हो सकती। नंबर दो, अब तक जो गुनाह किए उन पर दिल में पछतावा हो कि हाय किस बड़ी जात की मैंने नाफरमानी की। और नंबर तीन, आइंदा गुनाह न करने का पक्का इरादा हो। और अगर किसी गुनाह की वजह से अल्लाह तबारक व ताला या बंदों में से किसी का कोई हक जाए और बर्बाद हुआ है तो उसको भी अदा कर दिया जाए। अल्लाह ताला के हुकूक में से एक तो है नमाज। आदमी जब से बालिग होता है उस पर नमाज फर्ज हो जाती है। औरतों के लिए माहवारी शुरू हो जाए या 15 साल की उम्र पूरी हो तो वो बालिग कहलाती हैं। आप भी जब से बालिग हुई आप पर नमाज फर्ज हो चुकी। अब अगर उस वक्त से लेकर आज तक सारी नमाजें, पांचों नमाजें बराबर पाबंदी से अदा करती चली आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, या छूटी थी लेकिन उसकी कजा कर ली तो भी बहुत अच्छा, और अगर छूटी थी और अब तक कजा करने की नौबत नहीं आई तो यहां से उठकर घर जाने के बाद एक तन्हाई में बैठकर सोचो, गौर करो, अंदाजा लगाओ कि आज तक हमारी कितनी नमाजें छूटी। अंदाजा लगाने का तरीका आपको अभी बैत हो चुकने के बाद एक बुकलेट, एक किताबचा, एक पुस्तिका दी जाएगी, उसके अंदर लिखा हुआ है, उसको पहले पढ़ लेना, या अगर पढ़ना नहीं आता तो किसी से पढ़वा कर, घर के लोगों से सुनकर उसके मुताबिक सोच कर तय कर लेना कि आज तक हमारी कितनी नमाजें छूटी, और जो भी तय करो उसको डायरी में नोट कर लो या कागज पर लिख लो। एक बात याद रहे, औरतों के लिए माहवारी के जमाने में नमाज नहीं है। अब उन दिनों की जो नमाज छूटी हुई है उसकी कजा का मसला नहीं, वो कजा नहीं करनी है उन दिनों में। अलबत्ता क्या तरतीब करेंगे वो मैं बाद में बताऊंगा। इसी तरह रमजान के रोजे, बालिग होने के बाद जितने भी रमजान के महीने आए उनके रोजे भी आप पर फर्ज हो चुके, वो भी अगर बराबर पाबंदी से रखती चली आ रही हैं, कोई रोजा छूटा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, या छूटा था लेकिन कजा कर ली तो भी बहुत अच्छा, और अगर रोजे छूटे हैं और अब तक कजा करने की नौबत नहीं आई तो जो नमाजें छूटी थी उसके लिए जो आप बैठी और उसी बैठक में आपको ये भी तय करना है, सोचना है कि आज तक हमारे कितने रोजे छूटे, उसके भी सोचने और अंदाज़ा लगाने का तरीका उसी किताबचे में, उसी बुकलेट में है। वो पढ़ने के बाद उसके मुताबिक सोच कर जो भी तय करो उसको डायरी में नोट कर लो या कागज़ पर लिख लो और उसके मुताबिक रोज़ों की कज़ा कर लो। माहवारी के दिनों में रोज़े रखे तो नहीं जाएंगे, लेकिन उन छूटे हुए रोज़ों की बाद में कज़ा करनी है। बस ये नमाज और रोज़े में यही फ़र्क है। माहवारी के दिनों में जो नमाज छूटी हुई है वो कज़ा नहीं होती, उसकी कज़ा नहीं करनी है, लेकिन माहवारी के दिनों में जो रोज़े छूटे हैं वो रखना नहीं है, लेकिन बाद में उसकी कज़ा करनी है। और अगर आपके पास माल है या कोई माल ऐसा है जिसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है, जैसे आम तौर पर औरतों के पास जेवरात होते हैं, आजकल तो जो है वो सोने का भाव बहुत ज़्यादा हो गया, छोटे मोटे कोई एकाध जो जेवर हैं, कान की बालियां हैं या चूड़ियां हैं सोने की, तो उसके साथ कुछ पैसे भी हर एक के पास होते ही हैं, नकद पैसे, उसकी जब कीमत लगती है उस सोने के जेवर की, तो वो कीमत जो है वो अगर 612 ग्राम और 350 मिलीग्राम चांदी के बराबर हो जाती है तो उसमें ज़कात फ़र्ज हो जाती है। और आजकल आम तौर पर इतना तो होता ही है औरतों के पास जेवर इस किस्म का, तो अगर जेवर सोने का है साथ में चांदी का भी है और नकद रुपया भी है तो सब मिलाकर उसकी कीमत देखी जाएगी, और वो चांदी के निसाब जितनी यानी 312 ग्राम और 612 ग्राम और 350 मिलीग्राम जितनी कीमत की होती है तो ज़कात फ़र्ज है। ज़कात भी फ़र्ज है, क़ुरबानी भी वाजिब है, सदक़तुल्फ़ितर भी वाजिब है। अब अगर ये तीनों चीज़ें आप बराबर पाबंदी से देती चली आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर उसमें गफलत हुई है तो आपके पास वो जितना है सोना और ये वो सब लिख कर, नकद पैसा कितना है, सोना कितना है, चांदी कितनी है, ये तीनों चीज़ें लिखने के बाद किसी मुफ्ती के पास भेज दो, अच्छे माहिर मुफ्ती के पास, और वो उसको बता दो कि ये इतने सालों से मेरे पास है, 10 साल से है, 5 साल से है, लेकिन आज तक मैंने ज़कात दी नहीं, कुर्बानी की नहीं, मैं क्या करूं? तो वो मुफ्ती आपको बताएगा, उसके मुताबिक आपको करना है। और ये तो गोया ये हुआ अल्लाह का हक हुआ। और इसी तरह अगर हज फर्ज हो चुका है और नहीं किया है तो वो भी करना है। बंदों के हुकूक दो तरह के हैं, जानी और माली। जानी का मतलब ये है कि हमने किसी को मारा, पीटा, गालियां दी, बुरा भला कहा, तोहमत लगाई, सताया, गीबत की, हमारी तरफ से किसी को जिस्मानी या जहनी, शारीरिक या मानसिक तकलीफ पहुंची। जिसको भी तकलीफ़ पहुंची, जब तक कि वो ख़ुद माफ़ न करे वहाँ तक माफ़ नहीं होता। हम अल्लाह ताला के सामने कितने ही रोएं, गिड़गिड़ाएं, अल्लाह ताला से अर्ज़ करें, अल्लाह मैंने तो तेरे बंदों को बहुत सताया है, तेरी बंदियों को बहुत सताया है, मुझे माफ़ कर दे, तो अल्लाह ताला की तरफ से भी जवाब मिल चुका है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमको बतला दिया कि बंदों का हक अल्लाह माफ़ नहीं करते, बंदों से ही माफ़ करवाना पड़ता है। इसी तरह माली हक, हमने किसी के पास से पैसे लिए, कर्ज के तौर पर लिए, चुरा लिए, छीन लिए, या किसी का हम पर हक था, भाई का, बहन का या पड़ोसी का, वो हमने अदा नहीं किया, या कोई चीज़ किसी की ले ली वापस नहीं की, कोई चीज़ किसी की तोड़ दी उसकी कीमत अदा करनी चाहिए वो अदा नहीं की, ये सब माली हुकूक हैं। जब तक कि उनको अदा न करें या जिनका हक़ है वो माफ़ न करें वहाँ तक मामला साफ़ नहीं होता। इसलिए अब आज तक जितने लोगों के साथ आपका उठना बैठना मिलना जुलना रहा, जिनमें एक तो है रिश्तेदार, माँ बाप, भाई बहनें, और दूसरे करीबी रिश्तेदार जो हैं, चचा की लड़कियां, फूफी की लड़कियां, मामू की लड़कियां, खाला की लड़कियां, और ये जितने भी रिश्तेदार जिनके साथ आपका उठना बैठना मिलना जुलना रहा, या मर्दों में से जैसे कि आपके भाई हैं, आपके चचा हैं, आपकी खाला हैं, आपके फूफी हैं, ये वो उन सब के नाम लिखो। एक तो रिश्तेदारों के पहला ही नाम लिखो, अब्बा का, उसके बाद अम्मी का, फिर भाइयों का, फिर बहनों का, फिर दूसरे रिश्तेदार जो हैं चाहे जिनके साथ आपका उठना बैठना रहा, उनके नाम लिखो। ये एक लिस्ट हुई। दूसरी लिस्ट आपकी सहेलियों की, जिनके साथ आप उठती बैठती हैं, जो आपकी सहेलियां हैं, तो उनके भी नाम लिखो, वो भी 5, 10, 15 जो भी हैं। तीसरी लिस्ट मोहल्ले और बस्ती की औरतें, जो रिश्तेदार तो नहीं हैं, सहेली भी नहीं है, लेकिन किसी वजह से उनसे मामला पड़ता है, उनके साथ उठने बैठने की नौबत आती है, तो उनको भी, उनका भी नाम लिखो। और अगर बाज़ औरतें वो हैं तो कुछ काम करती हैं, मसलन कहीं पढ़ाती हैं, कहीं कुछ अपने घर में रहकर कुछ बेचती हैं, खरीदती हैं, कारोबार करती हैं, तो उनका भी जो है, जो लोग उनके पास, जो मतलब औरतें उनके पास खरीदने के लिए आती हैं या पढ़ने के लिए आती हैं, या इसी तरीके से और कोई आप ऐसा घरेलू काम करती हैं जिसकी वजह से आपको दूसरी औरतों से वास्ता पड़ता है, तो उनको चाहिए कि उन उन औरतों के नाम की एक अलग लिस्ट बनाए। इस तरह ये चार लिस्टें हो जाएंगी। एक तो वो जिनके साथ रिश्तेदारी है, एक वो जिनके साथ दोस्ती है, जो सहेलियां हैं, तीसरी वो जो मोहल्ले और बस्ती की है, जिनके साथ नौबत आती है उठने बैठने की, और चौथी ये। इस तरह चारों मिला करके मान लीजिए कि 200, 100, 200, 300 औरतें हैं। तो अब इस लिस्टों को देखो, क्या वे लेकर के बैठो। पहली लिस्ट जो है रिश्तेदारों की है, उसमें पहला इनाम अब्बा का है। सोचो आज तक मैंने अब्बा को कितनी तकलीफें पहुंचाई, उनका दिल दुखाया, उनकी नाफरमानियां की, उनको नाराज किया, उनको सताया, ये सब गुनाह हुए हैं, इसलिए उसको नोट करो। इसी तरह अम्मी के साथ, आमतौर पर लड़कियां माँ के साथ बहुत ज्यादती करती हैं, मोहब्बत में, इस माँ की मोहब्बत में कुछ कहती नहीं, पर वो जो है उनके नाफरमानियां करती हैं, उनको सताती है, उनकी बातें नहीं मानती, तो वो अंदर नोट करो। और इसी तरह दूसरी रिश्तेदार जो आपकी हैं, जिनके साथ आपका उठना बैठना रहा, तो उन उनको जो है, किसी को आपने बुरा भला कहा हो, किसी पर तोहमत लगाई हो, किसी को गालियां दी हो, किसी की गीबत की हो, ये सब सब है, उसका हक मारा है, उसकी उसको नोट करना है। इसी तरह दूसरी रिश्ता जो है आपकी सहेलियों की है, वहाँ भी इसी तरह किसी के साथ ज्यादती हुई है आपकी तरफ से, तो उसको नोट करो। इसी तरह वो मोहल्ले और बस्ती की औरतें या दूसरी औरतें, तो बहरहाल ये सब दोनों लिस्टें बनाई गई। जान ये तो जानी हुकूक, दूसरे माली हुकूक हैं कि भाई किसी के पास से पैसे लिए थे, अपनी बहन के पास से लिए थे, अम्मी के पास से लिए थे, बगैर पूछे हुए। एक तो एक उनको उन्होंने आपको हदिया दिया, ये नहीं अगर उनकी इजाज़त के बगैर चुपके से ले लिए हैं, या जो है कर्ज के नाम से लिए हैं और वापस नहीं किए हैं। इसी तरह सहेलियों वगैरह से कोई चीज़ किसी से खरीदी थी और वापस नहीं की थी, तो ये सब माली हुकूक हैं। तो ये दोनों किस्म के हुकूक की जब लिस्ट बन जाए, तो फिर ज़रा हिम्मत करके जो है हर एक के पास जाकर जानी हुकूक की, यानी अगर गालियाँ दी थी, तोहमतें लगाई थी, गीबत की थी, तो अल्लाह वास्ते माफ़ कराओ कि मेरी भूल हो गई, अल्लाह वास्ते मुझे माफ़ कर दो, और जो माली हुकूक हैं उनको अदा करो, और आज तक उसकी अदायगी में जो लेट हुई हैं उसकी माफ़ी मांगो। ये सब कर लोगी तो आपकी ये तोबा मुकम्मल होगी। ये अभी जो तोबा हो रही है आप, वो तो ज़बानी तोबा हुई, हकीकी तोबा जो है वो तो उसी वक्त कहलाएगी जब ये सब कर लोगी। और उसका जब ये सब कर लोगी, तो आज तक की आपकी ज़िंदगी का हिसाब किताब जो है बिल्कुल साफ और क्लियर कट हो जाएगा। अब आज से गोया एक नया सिलसिला शुरू होता है, आज से आपकी ज़िंदगी का एक नया बाब शुरू होता है, नया प्रकरण और नया चैप्टर शुरू होता है। आपको पांचों वक्त की नमाज जमात पाबंदी के साथ अदा करनी है। अब नमाज में जैसा कि पहले बतलाया था, माहवारी के दिन भी आती हैं, माहवारी के दिनों में नमाज फर्ज नहीं है, पढ़नी नहीं है। लेकिन देखो, अगर आप माहवारी के दिनों में बिल्कुल नमाज छोड़ दोगी तो नतीजा ये होगा कि जब माहवारी के दिन पूरे होंगे और फिर दोबारा पाकी में आ जाएंगी तो वो इतने दिनों छुट्टी रहने की वजह से नमाज की आदत में कमी आ जाएगी। आम तौर पर जो औरतों में नमाज के अंदर गफलत रहती है उसकी बड़ी वजह यही है। इसलिए उसका आसान तरीका यह है कि माहवारी के दिनों में भले नमाज तो नहीं है आपके ऊपर फ़र्ज, लेकिन फिर भी जब भी नमाज का वक्त आवे, जैसे रोज़ाना वज़ू करके आप नमाज पढ़ती थी, आज भी वज़ू करो। अगरचे वो वज़ू शरी वज़ू नहीं कहलाएगा, माहवारी के साथ वो दुरुस्त नहीं है, लेकिन वो गोया शक्ल है वज़ू की। और उसके बाद मुसल्ला बिछा करके बैठो और बैठ करके तस्बीह पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो, तीसरा कलमा पढ़ो, पहला कलमा पढ़ो, इस्तिग़फ़ार पढ़ो। बस इस माहवारी के अंदर आप कुरान की तिलावत नहीं कर सकती और नमाज नहीं पढ़ सकती, दो काम नहीं कर सकती। बाकी सब आपके पास पढ़ने की किताब है दुआ की, तो वो पढ़ो। मतलब है कि रोज़ाना फजर की नमाज में मान लीजिए कि आपको 10-15 मिनट लगते थे, आज भी 10-15 मिनट इसी तरह बैठ करके दुआ में, इस्तिग़फ़ार में, तस्बीह में, इसमें लगाओ, ताकि वो आदत आपकी न छूटे। इसी तरह ज़ोर के वक्त भी इसी तरह करो, असर तमाम नमाज़ों के अवकात में। उसका फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि एक तो ये है कि इस बहाने से जो है तस्बीह के ज़रिए से, दुआ के ज़रिए से, इस्तिग़फ़ार के ज़रिए से आपका ताल्लुक़ अल्लाह के साथ कायम रहेगा, और दूसरा ये है कि नमाज की जो आदत पड़ी हुई है वो छूटेगी नहीं, वो बाकी रहेगी। उसका फ़ायदा ये होगा कि माहवारी जाने के बाद जब पाक हो जाएंगी तो आपको नमाज पढ़ने में कोई सुस्ती नहीं आएगी। बहरहाल ये तो नमाज की बात हुई। इसी तरह रमज़ान के महीने में रोज़े रखने हैं, माहवारी के दिनों में रोज़े आपको नहीं रखने हैं, लेकिन बाद में उसकी कज़ा करनी है। जबकि नमाज माहवारी के दिनों में जो नहीं पढ़ी है, बाद में उसकी कज़ा भी नहीं है। ये दोनों में फ़र्क है। और आपके पास अगर जेवरात हैं, पैसा है, तो उसकी ज़कात अदा करो। आम तौर पर औरतों में एक सोच ये भी होती है कि मेरे पास जेवर है, पैसा है, तो उसकी ज़कात मेरा शौहर अदा करेगा या मेरे अब्बा अदा करेंगे। तो देखो, आप जब मालिक हैं तो शरीयत ये कहती है कि जो भी माल का मालिक हो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज होती है। तो जेवर की मालिक अगर आप हैं तो आप पर ज़कात फ़र्ज होगी। हाँ, अगर जेवर आपका नहीं है, जैसे शादीशुदा जो औरतें हैं उनको चढ़ावे के तौर पर जो जेवर ससुराल की तरफ से मिलता है, तो बाद जगहों पर जो है ये रिवाज है कि वो जेवर उस औरत का नहीं बल्कि वो ससुराल वालों का समझा जाता है, तो ठीक है, उस सूरत में तो उसकी ज़कात वही लोग अदा करेंगे। लेकिन जो जेवर आपको आपके माँ बाप ने दिया है या ससुराल वालों ने आपको दे दिया है, तो उसकी ज़कात आप पर फ़र्ज है, और हिसाब करवा करके उसकी ज़कात आपको अदा करनी चाहिए। आपके पास अगर इतने पैसे ना हों तो वैसे शरीयत तो ये कहती है उतना जेवर थोड़ा सा बेच करके अदा करो, नहीं तो कम से कम अपने शोहर से कहो कि मुझे इतने पैसे दो ताकि मैं उसके ज़रिए से अपने जेवर की ज़कात अदा करूँ। अगर आप बिल्कुल ज़कात अदा नहीं करेंगी तो ये जो है ना अल्लाह का एक फरीज़ा छूटने का बहुत बड़ा गुनाह होगा, और साथ ही साथ फिर यही जेवर आपके लिए क़यामत के रोज़ अज़ाब का ज़रिया बनेगा। हदीस के अंदर आता है कि किसी ने माल जमा किया, सोना चांदी रुपये, और उसकी ज़कात अदा नहीं की, तो कल तो को क़यामत में इसी सोने और चांदी को आग के अंदर गर्म करके उसके ज़रिए से दाग दिया जाएगा पेशानी के ऊपर, पहलू के ऊपर, तो ये बहुत बड़ा अज़ाब का ज़रिया बन जाता है। तो ज़कात की अदायगी का अहतमाम करना चाहिए। बहुत सी मरतबा ये जेवरात चोरी हो जाते हैं औरतों के, वो आम तौर पर उसकी वजह यही होती है कि वो ज़कात अदा नहीं करती, उसकी नवसत से ये मुसीबत आती है। बहरहाल आपको उसकी ज़कात भी अदा करनी है और क़ुरबानी भी देनी है। क़ुरबानी भी आपके आप पर है, शोहर पर नहीं है। लेकिन अगर शोहर आपकी तरफ से अदा करता है, आप उसको इजाज़त दे दें वो आपकी तरफ से अदा करे, तो सुभान अल्लाह। पर अगर वो नहीं अदा करता, तो आपको उतनी कुर्बानी करवानी पड़ेगी, एक हिस्सा या एक छोटा जानवर। और इसी तरीके से सदकतुल फितर भी आपको अपना अदा करना है। शोहर पर आपका सदकतुल फितर नहीं है, वो अगर आपकी तरफ से अदा करता है आपकी इजाज़त लेकर, कुर्बानी भी आपकी तरफ से कर देता है आपकी इजाज़त लेकर, आपकी ज़कात भी आपकी अदा हिसाब करके अदा कर देता है आपकी इजाज़त से, तो कोई बात नहीं, अच्छा है। लेकिन अगर वो नहीं करे तो आपको अदा करना है, नहीं करने की सूरत में आप गुनहगार बनेगी। इसी तरह अगर आपके पास इतना जेवर है बड़ी मकदार में कि उसकी वजह से उस जेवर की कीमत इतनी हो जाती है कि आप सफर हज कर सकती हैं, तो उस सूरत में आप पर हज भी फर्ज हो जाता है। बहरहाल ये मसाइल पूछ लेने के, और पूछ करके अगर हज फर्ज होता है तो आपको हज भी करना है, ये तो अल्लाह ताला के फरीजे हुए। और गया उसके अलावा जो है आपको रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करनी है, रोज़ाना एक मकदार मुतय्यन कर दीजिए। जिनको कुरान अगर हाफिज़ा हैं कोई औरतें अंदर मजमे में, तो उनको रोज़ाना 3 पारों की तिलावत करनी है, और हाफिज़ा नहीं हैं बल्कि नाजरा कुरान पढ़ती हैं तो उनके लिए 1 पारा, और अगर नाजरा भी नहीं आता उनको चाहिए कि सीखें घर में अपने शोहर से, अपने भाई से, अपने भतीजों से, भांजों से, जो महरम मर्द हैं उनसे सीख सकती हैं, सीखना चाहिए। सीखना शुरू कर दोगी अल्लाह ताला आसान कर देगा और कुरान पढ़ना आ जाएगा। अगर इसी हालत में इंतकाल हुआ तो गोया कुरान पढ़ने वालों के साथ आपको उठाया जाएगा। कुरान की तिलावत रोज़ाना हाफिज़ के लिए 3 पारे, गैर हाफिज़ के लिए 1 पारा, और तस्बीहात में 3रा कलमा है, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। एक तो ये हुआ। दूसरी चीज़ जो है दुरूद शरीफ, दुरूद शरीफ एक जो नमाज में पढ़ते हैं वो, या उसके अलावा जो भी दुरूद आपको याद हो छोटा बड़ा पढ़ सकती हैं। और तीसरी चीज़ है इस्तिग़फ़ार। इस्तिग़फ़ार के भी बहुत से कलमे हैं, जो कलमा आपको याद हो, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, या अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह, या अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी, या रब्बी इग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, या कुछ नहीं तो खाली अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये भी काफ़ी है। तो ये 3 चीज़ें हुई, 3रा कलमा, दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार। ये तीनों सुबह को भी 100-100 मरतबा और शाम को भी 100-100 मरतबा। सुबह की तस्बीह आप उठो जब से लेकर दिन के 12 बजे तक पूरी कर सकते हो, लेकिन अच्छा वक्त फजर की नमाज के बाद से लेकर सूरज निकलने तक का, उस वक्त हदीस में जिक्र करने की बड़ी फजीलत आई है। उस वक्त अगर ये तस्बीह पढ़ लें तो बहुत फ़ायदा होगा, सवाब भी ज़्यादा मिलेगा। और शाम की तस्बीह असर से लेकर सोने तक पूरी कर सकती हो, लेकिन असर और मगरिब के दरमियान अगर पढ़ी जाए तो बहुत अच्छा, फजीलत भी हासिल होगी, सवाब ज़्यादा मिलेगा। और अगर जो है वो उस वक्त नहीं पढ़ सकती तो उसके बाद पढ़ लें, सोने से पहले पूरी कर लें। और ये तस्बीह एक जगह बैठकर भी पढ़ सकती हैं और चलते फिरते भी पूरी कर सकती हैं। और जो औरतें बूढ़ी हैं उनके लिए तो बहुत आसान है, उनको तो फिर चाहिए कि ये तस्बीह 100-100 के बजाय 300-300 पढ़ें, यानी 300 मरतबा 3रा कलमा, 300 मरतबा दुरूद शरीफ और 300 मरतबा इस्तिग़फ़ार, सुबह भी और इसी तरह शाम को भी। उसके अलावा जो है 40 दुरूद छपे हुए हैं, वह भी आपको इंशाअल्लाह तकसीम किए जाएंगे बैत हो चुकने के बाद, वो 24 घंटे में 1 मरतबा आपको वो पढ़ना है। और दुआ की एक किताब है, उसका नाम है अल हिज़्बुल आज़म। ये किताब, ये दुआएं असल तो हैं अरबी में, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमको दुआ का तरीक़ा भी बतलाया है। और कोई हाजत हमारी ऐसी नहीं दुनिया आखिरत की जिसके मुतालिक आपने उसको मांगने का तरीक़ा हमको बतलाया ना हो। हदीसों में हर तरह की दुआएं हैं, और कुरान की दुआएं भी हैं, हदीस की दुआएं भी हैं। इसी तरीके से जो अगर कोई तकलीफ़ की चीज़ है, कोई जो है परेशानी की चीज़ है, तो उससे पना मांगने का तरीक़ा भी हुजूर ने बतलाया है, वो दुआएं भी कुरान और हदीस में हैं। इन दोनों किस्म की दुआओं को एक बहुत बड़े आलिम ने एक किताब में जमा कर दिया, उसी का नाम रखा है अल हिजबुल आजम। ये किताब ज़रा मोटी यानी कई वर्क की है, एक दिन में पढ़ना मुश्किल है, तो हमारी आसानी के लिए उसके 7 हिस्से कर दिए गए हैं और हर हिस्से को एक मंजिल का नाम दे दिया गया। पहली मंजिल शनिचर, दूसरी मंजिल इतवार, तीसरी मंजिल पीर, चौथी मंजिल जो है मंगल, इस तरह जुमा तक। तो उसको हर दिन की मंजिल उस दिन दुआ के तौर पर पढ़नी है। ये किताब जो है ना, किताब बिकती है जिन जिन दुकानों पर, जिन इस पर ये बुक डेपो पर, वहाँ मिलेगी। यहाँ सूरत के अंदर बहुत सी ऐसे मदीना बुक डेपो है, इस्लामी कुतुब खाना है, और जो है काजी कुतुब खाना है, और भी दूसरे हैं। तो बहरहाल वहाँ, और ये गुजराती तर्जमे वाली भी मिलती है, उर्दू तर्जमे वाली भी मिलती है, अंग्रेज़ी तर्जमे वाली भी मिलती है, हिंदी तर्जमे वाली भी मिलती है। तो आपको जो सी ज़बान आती हो उस तर्जमे वाली ले लो। तो दुआएं असल तो अरबी में हैं, उनके नीचे या उनके सामने उसका तर्जमा भी लिखा हुआ है, वो तर्जमा भी आप देख लो। उर्दू में हो तो उर्दू जानती हैं, या गुजराती जानती हैं तो गुजराती में, तो उस तर्जमा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस दुआ में क्या मांगा गया है। और इंसान का मिजाज है कि दुआ में जो मांगा जाता है उसकी अगर समझ पड़ती है तो जी ज़्यादा लगता है। तो उसको ऐसी किताब मंगवा कर उसी में आपको रोज़ाना यह वजीफ़ा पढ़ना है, और उसमें से बहुत सारी अच्छी अच्छी दुआएं हैं जिसमें दुनिया की ये आखिरत की नेमतें मांगी गई हैं। ऐसी दुआएं कुछ याद भी कर लो ताकि अपने तौर पर दुआ मांगना आ जाए। दुआ मांगना के भी हमें सीखना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको दुआ का तरीक़ा सिखलाया है। देखो ये मांगने वाले फ़कीर मोहल्ले में आते हैं ना, तो उन्होंने कैसी कैसेटें बना रखी हैं, कैसी आवाज़ें लगाते हैं वो, और सदा लगाते हैं वो, ये देर देर तक वो मांगते रहते हैं। उन्होंने तो इंसानों से मांगने का तरीक़ा सीख लिया, और हमने अल्लाह से मांगने का नहीं सीखा। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बतलाया, इसलिए इसमें से कुछ दुआएं हमें ज़बानी याद करनी। और अगर ज़बानी न भी याद हो तो उसमें देखकर भी आप दुआ कर सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं कि ज़बानी करें। और अगर अरबी में ना आवे तो उर्दू में, गुजराती में भी आप दुआ कर सकती हैं। तो इन दुआओं में से कुछ दुआएं याद भी कर लें, ताकि ये बड़ी रातें जो आती है, शब बारात आती है, शब कदर आती है, रमज़ान की रातें, जुमा की रातें, और आजकल तो लोगों को वहाँ हरमैन शरीफ़ उमरा और हज के लिए जाना बहुत आसान हो गया। लोग वहाँ जाते हैं उस वक्त तलाश करते हैं कि भाई हम कैसे दुआ मांगें। ये किताब अगर आपके पास होगी ना तो आपके लिए दुआ मांगना बहुत आसान हो जाएगा। खुद भी उससे फ़ायदा उठावें और दूसरी औरतों को भी बतावें ताकि उनको भी तरीक़ा मालूम हो। यह तो उस किताब की दुआ की बात हुई, उसके अलावा भी रोज़ाना 10 मिनट आपको अलग जो है वक्त निकालना है दुआ के लिए। उसमें 4 किस्म की दुआएं करनी है। पहली तो अपने लिए, अपनी हाजतें बहुत सारी होती हैं, हमारी औलाद है उसके लिए हम दुआ मांगते हैं, अपनी ज़रूरतों के लिए मांगते हैं ये, और दूसरा अपने रिश्तेदारों की ज़रूरतें, हमारे भाई बहन, हमारे माँ बाप, हमारे चचा, हमारे खाला फूफी मामू वगैरह, और तीसरा अपनी सहेलियों के लिए, और चौथा पूरी उम्मत मोहम्मदिया के लिए। रोज़ाना दुआ मांगने की आदत डालो। अगर आप इस तरह इन 4 किस्म के लिए दुआएं करोगी नहीं तो उसका फ़ायदा ये होगा कि अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल करेंगे। दूसरों के लिए जब दुआ की जाती है तो हदीस में आता है कि उस पर फरिश्ते आमीन कहते हैं, और दुआ कबूल होती है, उनके सदक़े में हमारी दुआ, हमारे काम भी बनेंगे। वह हम ऐसे आदमी बन जाएंगे जिनकी दुआ कबूल होती है, ऐसों को मुस्तजाब दावत कहते हैं। तो वो भी बड़ा आसान नुस्खा है, तो इसकी आदत डालो। और उसके अलावा जो है हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी, अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु अल क़य्यूम व अतूबु इलैह, अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु अल क़य्यूम जो है पूरी वो पढ़नी है। और सुन्नतों नफलों से फारिग होने के बाद 33 मरतबा सुबहानल्ला, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, और 34 मरतबा अल्लाह अकबर, उसको तस्बीह फ़ातिमी कहते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा को ये बतलाई थी तस्बीह। तो तो ये तस्बीह हर फर्ज नमाज के बाद पढ़नी है। जिन फर्ज नमाजों के बाद सुन्नतें नहीं हैं वहाँ तो फौरन, जैसे असर और फजर में, और जिन फर्ज नमाजों के बाद सुन्नतें हैं वहाँ सुन्नतों के बाद इसको पढ़ा जाए, और इसको सोते वक्त भी पढ़ना है। तो पांच नमाजों के बाद पांच मरतबा हुआ, और सोते वक्त कुल छः मरतबा इसको पढ़ना है। सोने का जब इरादा करो तो सोने के जो आदाब हैं, यानी आदाब का मतलब ये है कि सोने का जो तरीक़ा हमको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है उसके मुताबिक हमको सोना है। चुनांचे हमें जो तरीक़ा बतलाया गया उसमें ये कहा गया है कि आपको बावजू सोना है। अगर वज़ू नहीं है तो वज़ू कर लो, फिर जब बिस्तर पर के बिस्तर पर आओ तो ये तस्बीह पहले पढ़ लो, लेट मत जाओ, बैठे बैठे ये तस्बीह फातमी पूरी कर लो। उसके बाद फिर तीसरा काम ये करो कि सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी और चारों कुल ये सब पढ़ करके दोनों हथेलियों पर दम करके दोनों हाथ अपने सर पर, अपने चेहरे पर, अपने पूरे बदन पर आगे पीछे फिरा दो। इस तरह अगर आप करोगी तो रात भर अल्लाह की हिफाजत में रहोगी, कोई शैतान, कोई जिन, कोई आसेब आपको कोई असर नहीं पहुंचा सकता। और यही आदत डालो, और ये उसके बाद फिर लेट जाओ। लेटने का भी जो सुन्नत तरीक़ा है, दाएं करवट के ऊपर, दाएं गाल के नीचे दाया हाथ रख करके, और उसके बाद दुआ पढ़ लो, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु वअहया, सोते वक्त की दुआ है। और भी दुआएं हैं, जो भी दुआएं याद हो सोते वक्त की वो पढ़ लो, बस हो जाओ। सुबह को उठो, उठते ही हमें हमारी ज़बान पर अल्लाह का जिक्र होना चाहिए, दुआ होनी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमाताना व इलैही नुशूर, और ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू, और ये और भी जो है कलिमात हैं वो जो याद हों जिक्रुल्लाह के वो पढ़ो, और उसके बाद फिर जो है वो इस्तिंजा वगैरह के लिए जाओ। इस्तिंजा के लिए जब जाओ तो बैतुल खला में दाखिल होने से पहले दुआ पढ़ लो, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसि वल खबाइस, और फिर अंदर दाखिल हो। दाखिल होने के लिए भी जो सुन्नत तरीक़ा है कि पहले उल्टा पाँव फिर सीधा पाँव, फिर फारिग होने के बाद जब निकलो तो पहले सीधा पाँव निकालो फिर उल्टा पाँव निकालो, और जो है दुआ पढ़ लो गुफरान का, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबानी अल्अज़ा वाफ़ानी। मतलब ये है कि इन सारे कामों के जो तरीक़े हमको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाए हैं, खाने का, सोने का, क़ज़ाए हाजत के लिए जाने का, घर में दाखिल होने का, घर से निकलने का, ये तमाम काम हम सुन्नत के मुताबिक करेंगे। जब सुन्नत के मुताबिक करेंगे तो गोया ये सारे काम हैं तो हमारी ज़रूरत के, लेकिन सुन्नत की बरकत से वो इबादत बन जाएंगे। खाना हम इस आदाब की रियायत करते हुए जब खाएंगे तो ये खाना हमारा इबादत बन जाएगा। सोना आदाब की रियायत करते हुए करेंगे उसके मुताबिक तो ये सोना हमारा इबादत बन जाएगा। इसी तरह तमाम कामों को उसके मुताबिक करना है। ये तो गोया करने की चीज़ें हुई। बचने की चीज़ों में जैसा कि अभी आपने बैत में कहा, हम जो है कोई गुनाह नहीं करेंगे, हर गुनाह से अपने आप को बचाना है। उसमें आजकल एक गुनाह तो वो है जो बहुत ज़्यादा होता है, आँख का गुनाह। आँख का गुनाह में औरतें भी मुबतला हैं, ये टीवी देखती हैं, मोबाइल के अंदर तस्वीरें देखती हैं, नामहरम मर्दों को देखना, ये भी गुनाह है, इससे अपने आप को बचाओ। और दूसरा जो है गीबत करते हैं, ज़बान का गुनाह, ये किसी की बैठ कर के आम तौर पर औरतों में ये बीमारी होती है, उसकी बुराई की, इसकी बुराई की, उसके ऊपर टॉन्टिंग की, दूसरी लोगों की बुराइयां तलाश करना, ये बहुत ख़तरनाक गुनाह है, इससे अपने आप को बचाने का अहतमाम करना है। तो अपनी आँख की भी हिफाजत करो, ज़बान की भी हिफाजत करो। हमारा नफ्स हमें दूसरों के ऐप तलाश करवाता है। आदमी का मिजाज क्या होता है, लोगों को देख करके उसमें फलाई बीमारी है, फलाई है, ये कमी है, हमें दूसरों की कमियां नज़र आती हैं और अपनी जो कमियां, अपने जो ऐब हैं वो हमको दिखते नहीं है। हमारे नफ्स ने हमको धोखे में डाल रखा है। नफ्स के धोखे में ना आओ, अपने ऐबों को देखते रहो, तलाश करते रहो और उसकी इसलाह करते रहो, उसको ठीक करते रहो। लोगों के ऐबों से आँखें बंद कर लो और जो है हराम लुकमे से अपने आप को बचाओ। खैर, आप तो कमाई के लिए नहीं जाती, आपके शौहर जाते हैं आपके, लेकिन अगर आपके इल्म में है ये बात कि शौहर गलत तरीके से, शरीयत के ख़िलाफ़ तरीके से कमाई हासिल कर रहा है, तो उनको टोको कि हम इस तरह की कमाई नहीं खाएंगे, हमको तो हलाल तरीके से ला करके दो, तो इसका एहतमाम करना चाहिए। उसकी बरकत से अल्लाह ताला नेक अमल की तौफीक अता फरमाते हैं। बहरहाल हर किस्म के गुनाह से अपने आप को बचाना है और कोशिश यही करनी है कि हमसे कोई गुनाह न होने पावे, लेकिन इसके बावजूद खुदा न खास्ता कोई गुनाह हो गया तो फौरन तौबा, तौबा में देर नहीं लगनी चाहिए। जैसे कि देखो, हम ना धो करके कपड़े बदलते हैं तो अपने कपड़ों को कितना बचाते हैं, ज़रा भी उसके ऊपर कोई नापाकी का छींटा नहीं पड़ना चाहिए, बहुत बचाएंगे। और अगर कहीं बेखबरी में पड़ गया तो फौरन उसको धोकर पाक कर लेते हैं। इसी तरीके से आज आपने तौबा कर ली और तौबा करके अपने आप को गुनाहों से पाक कर लिया है, आइंदा अब हर गुनाह से अपने आप को बचाना है। लेकिन खुदा न खास्ता अगर कोई गुनाह हो जाए गफलत की वजह से, तो फौरन तौबा का एहतमाम करो, तौबा में देर न लगाओ। जो बंदा तौबा करता है अल्लाह ताला उससे बड़ी मोहब्बत करते हैं। हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अत्ताइबु मिन ज़म्बे कमन ला ज़म्ब लहू, जो आदमी गुनाह से तौबा करता है वो ऐसा है जैसे उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। इसलिए हमेशा आदत डालो, रात को सोने से पहले है ना बैठ कर सोच लो कि आज दिन भर मुझसे क्या क्या हुआ, मैंने ज़बान से क्या गफलत की, मेरी आँखों से क्या गुनाह हुए, मेरे कान से क्या गुनाह हुए, याद करके उन गुनाहों से तौबा किए बगैर मत सोओ। तो ये, और फिर आज मैंने पांचों नमाजें पढ़ी या नहीं, आज कुरान की तिलावत की या नहीं, आज जो है मैंने तस्बीहात पढ़ी कि नहीं, आज मैंने हिजबुल आजम और 40 दुरूद पढ़े या नहीं, ये अपना रोज़ाना जायज़ा लो। तो उसकी वजह से जो है ना हमें फ़ायदा होगा और इस पर अमल का अहतमाम होगा। और अपने घर के अंदर रहो, ज़्यादा बिला वजह घर से बाहर न निकलो। औरतों को ताकीद है, कुरान में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बीवियों को हुक्म दिया था, वकरना फी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों के अंदर जमी रहो, निकलो मत। तो हमें भी चाहिए, और हमें तो हमारी जन्नत की औरतों की सरदार तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। उनका तरीक़ा तो यह है कि वो फरमाती हैं कि औरत के लिए बेहतर ये है कि न वो कुछ किसी गैर मर्द को देखे और न कोई गैर मर्द उसको देखने पावे। ऐसा औरतों को तो रहना चाहिए, इसका एहतमाम हो। और घर में जो है ना नमाजों का एहतमाम, आपकी जो बेटी औलादें हैं, छोटी छोटी औलादें, या आप बूढ़ी हो चुकी हैं लेकिन आपकी नौजवान बेटियां बहुएं, उनकी औलादें, उनकी निगरानी करो, उनको जो है उनको न वक्त पर नमाज की ताकीद करो, छोटे बच्चे जो हैं उनको दुआएं सिखलाओ, नमाज की तरफ मुतवज्जे करो, नमाज का तरीक़ा बतलाओ। घर में रोज़ाना कुछ देर 15-20 मिनट के लिए फ़ज़ाइल की तालीम होनी चाहिए, ताकि आपको मालूम हो कि नमाज की क्या फजीलत है, कुरान की तलावत की क्या फजीलत है, दुरूद की क्या फजीलत है। ये सब फ़ज़ाइल की किताबों में ये सब है, फ़ज़ाइल नमाज, फ़ज़ाइल ज़िक्र, फ़ज़ाइल दुरूद, फ़ज़ाइल सदक़ात, तो उससे इन कामों को करने की रग़बत होती है। और मसाइल की भी तालीम होनी चाहिए, यानी गोया हफ्ते में एक दो दिन ऐसे भी हों कि घर की औरतें मिल करके एक तो जो है नमाज किस तरह पढ़ी जाती है, नमाज का तरीक़ा, नमाज के मसाइल बाकायदा पढ़ करके हर एक का बतावे, नमाज इस तरह खड़ी होकर पढ़े, उसमें जो पढ़ना है वो ज़ोर से पढ़े ताकि दूसरी सुने, कोई भूल हो तो उसको नोट करें और इनको बताएं। और कुरान को सही पढ़ने के लिए भी मिलजुल करके इसका अहतमाम किया जाए। अगर घर में आपके बेटे या पोते नवासे जो भी हैं आपके शौहर, तो उनको इसकी तरफ मुतवज्जे करें, उनको उनसे सही कुरान सीखने की कोशिश करें। तो बहरहाल ये आपके घर में रोज़ाना ऐसी मजलिसें होनी चाहिए। हम ऐसी बेकार बातों के लिए तो हम बैठकें और मजलिसें करती हैं, लेकिन ये गलत है। असल तो ये है कि अल्लाह के अहकाम को सीखने के लिए ये इस तरह का गोया बैठना होना चाहिए, मुजाकरा होना चाहिए, मसाइल का भी हो, फजाइल का भी हो, और रोज़ाना जो है वो निगरानी हो। और घर में गलत किस्म की औरतें आपके घर में ना आने पावे, इसकी ख़ास ताकीद करो। इस ज़माने में यही बड़ी मुसीबत हो गई, ऐसी औरतें आकर के हमारी बच्चियों को, हमारी नौजवान बहुओं को गलत चीज़ों की तरफ मुतवज्जे करती है, घर का माहौल ख़राब होता है। बहुत सी जगह सुना बड़ी नेक लड़कियां हैं, लेकिन ऐसी गलत औरत आ गई और उसने उनको बुराइयों में डाल दिया। इसलिए अपने घर की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है। आप खुद भी नमाजों का अहतमाम करें, अपनी बच्चियों, बहुओं और बच्चों से भी नमाज का अहतमाम करवाएं, खुद भी तिलावत का अहतमाम करें, उनसे भी तिलावत का अहतमाम कराएं, खुद भी दुआओं का अहतमाम करें, उनसे भी दुआओं का अहतमाम कराएं। सुबह में जल्दी उठने की आदत डालें, खुद भी उठें, जो सोए हुए हैं नमाज फजर की अज़ान होते ही या सुबह सादिक होते ही उनको उठा दिया करें, उनकी नमाज की निगरानी करें कि उन्होंने नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी, ना पढ़ी तो उनको टोकें, उनसे पढ़वाएं। ये काम आपका है, छोटे बच्चे हैं उनको दुआएं सिखलाएं। बहरहाल शौहर भी अगर नमाज वगैरह की तरफ से गफलत बरत रहे हैं तो उनको भी मुतवज्जे करें। जब आप अपनी ज़रूरतें उनसे मांगती हैं, उनके लिए कपड़ों के वास्ते बात करती हैं, तो उनकी नमाज के लिए भी उनसे बातचीत करनी चाहिए। तो बहरहाल ये सब चीज़ आपको करनी है। इस तरह रहोगी तो इंशाल्लाह उससे बड़ा फ़ायदा होगा। वो हिकायत सहाबा जो है फ़ज़ाइल की किताबों में एक अलग से किताब है, उसमें सहाबी औरतों के हालात भी लिखे हैं। बेहिश्त ज़ेवर के अंदर भी हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो है औरतों के हालात वाक़यात लिखे हैं वो बाकायदा। और आजकल तो ऐसी बहुत सारी किताबें आई हैं, उन किताबों को अपने घर में रखें और रोज़ाना उनकी भी तालीम होनी चाहिए 5-10 मिनट, ताकि हमें रग़बत हो। बहरहाल ये सब चीज़ें हैं, उन पर अमल करना है, और अमल माहौल से आसान हो जाएगा। आप घर में माहौल इस तरह नमाज का, तिलावत का, तस्बीहात का, दुआओं का बनाएंगी तो आपके लिए भी अमल करना आसान और घर के और लोगों के लिए भी अमल करना आसान हो जाएगा। अल्लाह ताला आपको तौफीक अता फरमाए। ये हमारा सिलसिला जिसमें आप बैत हुई, ये चिश्तिया सिलसिला है, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह वाला। अल्लाह तबरक तआला आपका ये बैत होना कबूल फरमावे, सिलसिले की बरकतों से नवाजे। अभी ये सब बातें जो आपको कही गई हैं वो जो है बुकलेट में है, तो इंशाल्लाह वो सारी कि बुकलेट आपको अभी दी जाती हैं, और जो 40 दुरूद छपे हुए हैं वो भी आपको दिए जाएंगे, और अल हिजबुल आज़म वाली दुआ की किताब है वो तो आपको वहाँ किसी किताब की दुकान से लेनी है। और ये सारा ये बुकलेट लिए बगैर न जाएं और दुआ कर लीजिए, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए।
ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक अल्लाहुम्मा सल्ले व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आली सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तरदा بعدد ما تحب وترضى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى يا الله तो हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा, तेरी मर्ज़ियात पर तू हमको ज़्यादा से ज़्यादा चला कर, तेरी नामर्ज़ियात से हमारी पूरे पूरी हिफाजत फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीक़ों और सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी के हर शोबे में जारी करने और अपनाने की हमें तौफीक और सआदत अता फरमा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीक़ों की मोहब्बत और गैरों के तरीक़ों की नफ़रत हमारे दिलों के अंदर डाल दे। तमाम रज़ाइल और बुराइयों से हमको पाक और साफ़ फरमा कर अल्लाह महासिन अखलाक से मुज़य्यन फरमा। अल्लाह हमें, हमारे अहलोयाल और तमाम मुतालिकीन को सेहत, कुव्वत, आफ़ियत, सलामती, दुनिया आखिरत की भलाइयों से माला माल फरमा। हमारी तमाम ज़रूरतों को अपने ख़जाने गैब से किफ़ालत फरमा। हमें किसी का मोहताज और दस्तनिगर न बना। हमारी रोज़ियों में बरकत और वसअत अता फरमा। ऐ अल्लाह तो हमारी औलादों को अकायद हक्का, उलूम नाफिया, आमाल सालिहा, अखलाक फाजिला से आरास्ता फरमा। बुरे अखलाक, बुरे किरदार और गुफ्तार, बुरे आदात व अतवार, बुरी सोहबतों, बुरे माहौल के बुरे असरात और बुरे लोगों की बुरी आदतों का निशाना बनने से उनकी पूरी पूरी हिफाजत फरमा, अपनी शान रुबूबियत से ए अल्लाह तो उनकी तरबियत फरमा कर, उनको हमारी आँखों की ठंडक, हमारे दिलों का सुरूर, हमारे लिए सदक़े जारिया और हमारी उम्मीदों से बढ़ करके बना दे। अल्लाह हमें और हमारे घर के तमाम छोटों बड़ों को तू नमाज का कायम करने वाला बना दे, नमाज का इश्क व मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर डाल दे, नमाज को हमारी आँखों की ठंडक बना, नमाज का खुशो व खुजू हमें अता फरमा, नमाज के अनवार व बरकात से हमारी ज़िंदगियों और हमारे घरों को अल्लाह मुनव्वर और मामूर फरमा, अल्लाह इबादत का अहतमाम नसीब फरमा, मामलात की दुरुस्तगी अता फरमा, माशरत का हुस्न अता फरमा, आपसी हुकूक़ की अदायगी का अहतमाम नसीब फरमा, आपस की हक तलफियों से अल्लाह हमारी पूरे पूरी हिफाजत फरमा, अल्लाह हम सब पर अपना खुसूसी फल फरमा, अल्लाह ये तेरी बंदियाँ उन्होंने अल्लाह तेरे नेक बंदों के सिलसिले अल्लाह इन सिलसिलों से अपने आप को जोड़ा है बैत के ज़रिए से, अल्लाह इन सिलसिलों की बरकतों से इनको माला माल फरमा, अल्लाह तू अपनी इताअत और फरमाबरदारी की इनको तौफीक अता फरमा कर, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की मुकम्मल पैरवी नसीब फरमा, सिलसिले के तमाम बुज़ुर्गों से हकीकी ताल्लुक़ और नस्बत अता फरमा, दुनिया में उनके नक्श कदम पर चला कर आखिरत में उनके साथ हशर फरमा, अपने अपने वक्त पर अल्लाह हम सब को ईमान के साथ दुनिया से जाना नसीब फरमा, अल्लाह हमारे बीमारों को सेहत कामिला आजला मुस्तमिल्ला अता फरमा, मकरूज़ों के कर्ज़ों के अदायगी की शक्लें पैदा फरमा, परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा, हाजतमंदों की हाजतें पूरी फरमा, कैदोबंद में महबूसों को रिहाई नसीब फरमा, मुकदमात में माखूजों को बरी फरमा, जो जिस मुसीबत में गिरफ्तार है उससे नजात अता फरमा, अल्लाह तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती जहाँ कहीं भी हो उसके ईमान और इस्लाम की, जानो माल की, इज्जत व आबरू की, अहलो आयाल की, तिजारत व ज़राअत व कारोबार की, हर चीज़ की पूरे पूरी हिफाजत फरमा, अल्लाह पूरे आलम में उम्मत मोहम्मदिया जहाँ कहीं मजलूमियत का शिकार है उसकी भरपूर नुसरत फरमा, अल्लाह तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी खैर और भलाई तुझसे मांगी हमें और पूरी उम्मत को अता फरमा, और जिन शुरू और बुराइयों से पनाह चाही उससे हमारी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा, अल्लाह इस मजलिस में शरीक तेरी तमाम बंदियों की जायज़ और नेक मुरादें पूरी फरमा, जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा, आज तक तुझसे मांग कर कभी महरूम नहीं हुए, अब भी और आइंदा भी महरूम न फरमा, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नक अंतत तवाबुर रहीम, सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका।
ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।